أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بحث ہماری آموزش فلسفہ میں چل رہی تھی اور ہماری بحث کانٹ کے فلسفے تک پہنچی تھی اور بیان کیا تھا کہ کانٹ اس کے زمانے میں فلسفے نے ایک نیا رخ اختیار کیا، کیونکہ جناب کانٹ نے آ کر جو عقل نظری کے ذریعے بحثیں ثابت ہوتی تھیں، عقل نظری کو جو اعتبار حاصل تھا فلسفے کے اندر، اس کو کانٹ نے رد کر دیا اور کہا کہ ہم عقل نظری کے ذریعے واقعیت اور حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. لہذا اس نے ایک تفصیلی کتاب لکھی عقل نظری کے رد میں، جس کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پچھلے درس میں بیان کیا تھا، نقد عقل محض. اور اس کے فلسفے کا نام ہی جو ہے وہ انتقادی فلسفہ پڑ گیا، چونکہ اس نے نقد کا جو ایک میدان کھولا اور عقل نظری کے اوپر جو ہے وہ رد کیے آ کر، وہ یعنی کم سابقہ تھے، یعنی پچھلے فیلسوف اور فلسفی اس طریقے کا رد نہیں کر سکے کہ جو کانٹ کر سکے. کانٹ نے ایک جو مطلب آ کر بیان کیا وہ یہ کہ دو اصطلاحوں کو استعمال کیا، کہا ایک نومن ہوتا ہے اور ایک فینومن. نومن جو ہے وہ ہماری ذات سے ہٹ کر ہوتا ہے، اور فینومن وہ ہوتا ہے کہ جو میرے نفس کے لیے ظاہر ہو، جو میرے ذہن میں حاضر ہوتا ہے. مثلا اس وقت ایک آپ کی یہ ہستی ہے جو میرے سے ہٹ کر ہے، اس کو نومن سے یاد کرتے ہیں، اور ایک آپ میرے نفس میں میرے ذہن کے اندر جلوہ گر ہو رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ فینومین. یہ دو تفکیک کر کے کہ ایک نومن ہے اور ایک فینومین ہے، تو کانٹ نے کہا کہ نومن کو ہم کما حقہو یا جس طریقے کا وہ ہے اس طریقے سے جان نہیں سکتے. ہمارے لیے جو کچھ بھی ہے وہ یہ فنومن ہے کہ جو میرے ذہن میں حاضر ہوتا ہے. درست ہے؟ اگر ہم اس کو فلسفی زبان میں اپنے اسلامی زبان کے اندر بیان کرنا چاہیں تو یوں کہیں گے کہ ایک وجود خارجی ہوتا ہے اور ایک وجود ذہنی ہوتا ہے. وجود خارجی کی شناخت ممکن نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ وجود ذہنی ہے. درست ہے؟ انسان جو ہے وہ ادراک کرتا ہے، اور ادراک کی جو صورتحال ہے اور جو وہ عملیات طے کرتا ہے ادراک کو، تو وہ کس طریقے سے انجام پاتا ہے؟ کہ انسان جب کسی چیز کو درک کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا جو مٹیریل ہے، جو مادہ ہے، وہ خارج سے لیتا ہے، اور یہ مادہ جو خارج میں موجود ہوتا ہے یہ ذہن کے اندر موجود مختلف مقولات جو موجود ہیں، کیٹاگریز جو مختلف موجود ہیں، ان کے توسط سے فہم کے قابل بنتا ہے وہ خارج. بس کانٹ کے نزدیک ادراک دو چیزوں سے مرکب ہے. یہ دو چیزیں جب تک نہیں ملیں گی آپ کسی چیز کو درک نہیں کر سکتے، ایک مادہ اور ایک کیا ہے اس کی आप यूं कह लें कि मकूलात से उसको गुजर के जाना, जिसको हम अपनी जो है वो फलसफा इस्लामी के अंदर जबान अगर देना चाहें तो वो कहेंगे सूरत। एक उसका मादा है, एक उसकी सूरत है। मादा तो खारिज से लेना है, लेकिन सूरत किसने देनी है? जहन ने। जहन के अंदर 12 मकूलात मौजूद हैं, जिसको कहा जाता है कैटेगरीज ऑफ कांट। इस 12 मकूलात को, कैटेगरीज को, 4 कुल्ली दस्तों में तकसीम किया है, फिर हर एक चार चार में तकसीम होता है। मसलन आप देखें, एक है क्वालिटी क्वांटिटी, एक है क्वालिटी, एक है रिलेशन और एक है मोडेलिटी। ये कुल्ली तौर पर 4 मकूलात हैं कि जिसका कांट का एल है। फिर ये जो क्वांटिटी है, ये फिर आके तकसीम होती है कुल्ली, जुज़ई और शख्सी की तरफ। कि उन सारी तफसीलात में नहीं जान चुके अभी, कांट का फलसफा मुकम्मल वजाहत नहीं करनी, फकत आपको ये बयान करना था कि कांट ने अक्ल नजरी के अंदर जो किताब लिखी है और रद्द किया है, क्या काम किया है उसने। तो ये कैटेगरीज ऑफ कांट, जिसको मकूलात कांट कहा जाता है, ये कायल है कि मादा जब आता है जहन में, तो ये 12 मकूले उसके ऊपर क्या है, मुख्तलिफ रंग चढ़ाते हैं। यानी खारिज और वाकईयत और हकीकत, खारिज में जो है वो बेरंग है, इसको रंग कौन चढ़ाता है? जहन के अंदर मौजूद मकूलात। अब कांट से सवाल किया जाए कि ये मकूलात कहां से आए, फिर वो कहता है ये फितरी हैं, इंसान खल्क ही इन्हीं मकूलात के साथ हुआ है। दुरुस्त है, मतलब टाइम एंड स्पेस भी इसी के अंदर जो है वो आ जाते हैं, और 12 चीजें मकूलात जो है आपकी खिदमत में अर्ज किया। तो इस तरीके से वो इदराक का कायल होता है। तो अब आप तवज्जो करें तो क्या हकीकत में हुआ है? वाकईत जो कुछ भी है वही है जो मेरे जहन में है। हकी जैसे अभी हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हकीकत वो है कि अगर हमारे जहन में मौजूद चीज खारिज के साथ मुताबिक हो जाए, उस जैसी हो, वही हो, तो हकीकत है, रियलिटी है, वाकईयत है। लेकिन कांट के इस फलसफे के मुताबिक क्या नतीजा निकलता है कि जहन असलन मुताबकत का माना उसने खत्म कर दिया। आगे जो हकीकत की तारीफ थी एक फलसफे के अंदर, कि जहन का मुंतबिक होना खारिज के ऊपर अगर मुंतबिक हो जाए तो वो हकीकत है, अगर मुंतबिक ना हो तो वो हकीकत नहीं है। कांट के फलसफे में ये बहस खत्म हो जाती है। और इसी वजह से आपको अर्ज किया था कि कांट के बाद फिर जो मगरिब फलसफा है, उसने असल डायरेक्शन उसकी बदल गई। वजूद शनासी से कहां चला गया? माफी शनासी, इल्मियात की तरफ, थ्योरी ऑफ नॉलेज उसको कह लें या एपिस्टेमोलॉजी आप कह लें, उसकी तरफ चला गया। बात वाज़ेह है। और फिर इसके एतराजात जो हैं वो इतने मारूफ हुए कि काफी अरसे तक ये पूरी दुनिया पर इसने हुकूमत की, कांट के अफकार ने आकर। अभी भी जर्मनी के अंदर कांट आप यूं कह लें कि अपना मकाम जो है रखता है, लेकिन पूरी दूसरी दुनिया के अंदर कांट को अगरचे अहमियत हासिल है, लेकिन इसके मुकाबले में भी बाज़ फलसफे जो हैं वो सामने आ गए हैं। तो लिहाजा अक्ल नजरी के अंदर इस तरीके से आके इसने बहस की और आकर अदिल्ला तोहीद को भी, अदिल्ला वजूद खुदा को भी जो है वो रद्द कर दिया, रूह जिससे साबित होनी थी उसको भी रद्द कर लिया। जैसे अर्ज किया कि इंसान के मुख्तार होने को भी बुरहान अकली से साबित नहीं किया जा सकता, इसने कहा। हाँ, फिर क्या करें, खुदा के मुनकिर हो जाएं? नहीं, वो कहता है खुदा का इनकार मुमकिन नहीं है। अक्ल अमली के साथ फिर इसने आकर खुदा को साबित किया, यानी अखलाक के जरिए खुदा को साबित किया। हम कलाम जदीद की बहस में जाकर पढ़ेंगे कि کہ اخلاق اور دین کے درمیان کیا رابطہ پایا جاتا ہے، دین مقدم ہے یا اخلاق؟ تو کانٹ کے نظریے کے مطابق کیا ہے؟ اخلاق مقدم ہے. کہ انشاءاللہ جب موقع آئے گا اس کلام جدید کے اندر وہاں پر یہ بحث کریں گے اور کانٹ کے اس نظریے کو رد کریں گے وہاں پر. جب یہ سلسلہ کانٹ کا جو ہے وہ شروع ہوا تو اب اس کے پیروان وجود میں آئے، اس کے شاگرد اور اس سے متاثر ہونے والے افراد، انہوں نے ایک نئے مکتب کی تاسیس کی جس کو کہا جاتا ہے آبجیکٹو آئیڈیالزم، جس کو آپ فارسی میں اگر جا کر دیکھیں گے تو یوں ترجمہ ملے گا، آئیڈیالزم عینی، آبجیکٹو آئیڈیالزم. تیسرے درس کے اندر، اب یہاں سے ہمارا آموزش فلسفہ کتاب کے مطابق تیسرا درس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر جو پہلا مکتب تعارف کرواتے ہیں اس تیسرے درس کے اندر، وہ یہی آبجیکٹو آئیڈیالزم ہے. اور اس کے اندر تین اہم شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اس مکتب کو جو ہے آگے بڑھایا. ایک ہے یوہان فیکتے، اور دوسرا ہے ویلہم شیلنگ، اور تیسرا ہے ہیگل. یہ تین شخصیات ہیں جنہوں نے آبجیکٹو آئیڈیالزم کی بنیاد رکھی، اور ان میں سے، ان تینوں میں سے سب سے زیادہ موفق کون ہوا؟ ہیگل. ہیگل جو ہے وہ ان تین دونوں سے اس نے جو ہے وہ شہرت زیادہ حاصل کی. اگرچہ ہیگل کسی نہ کسی اعتبار سے جو ہے یہ اس کا، فیکٹے کا اور شیلنگ کا شاگرد بنتا ہے، اور عمر میں شیلنگ سے بڑا بھی تھا، لیکن پھر بھی اس نے شاگردی اختیار کی ہے شیلنگ کی، یا شیلنگ جو بھی آپ تلفظ کریں اس کا. ان کی روش کیا تھی بحث کرنے کی؟ کانٹ نے آ کے عقلی استدلال اور برہانی استدلال کو تو رد کر دیا تھا آگے. انہوں نے پھر آ کر کیا کیا؟ استفادہ کرنا شروع کیا تخیل سے. احساس سے جو ہے وہ استفادہ جو ہے انہوں نے کرنا شروع کیا. یعنی ان کے اندر جو آپ یوں کہہ لیں کہ روش پائی جاتی تھی نا، آپ یوں سمجھے کہ تقریباً عرفانی روش تھی. کانٹ کے فلسفے کے اندر جو ضعف موجود تھے، ان ضعف کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے وہ عشق اور مثلاً تخیل اور احساس، ان کا سہارا لیتے ہوئے آ کر اس کو جو ہے جبران، اس کا تلافی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے. خوب، فیختے جو تھا، یا فارسی میں اس کو فیختے جو ہے وہ کہا جاتا ہے، لیکن اصل تلفظ اس کا یوہان فیکٹے ہے. فیکٹے ڈائریکٹ جو ہے کانٹ کے ساتھ ارتباط میں تھا. اس نے کہا، کانٹ کیا کہتا تھا، ایک ہمارے باہر مستقل چیز ہے جس کو نومن کہتے ہیں، اور ایک کیا ہے، فنومن ہے جو ہمارے ذہن کے اندر ہے. درست ہے، یہ دو چیزوں کا قائل تھا. اس فیکٹے نے آ کر کہا کہ اس نومن کی ضرورت ہی نہیں ہے. طبیعت جو ہے وہ میرے من کے، میرے نفس، میرے ذہن کے تابع ہونی چاہیے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی ارتباط نہیں ہے. کانٹ کیا کہتا تھا، ادراک نہیں کر سکتا انسان جب تک کہ وہ نومن نہ ہو، چونکہ وہ مادہ مٹیریل بنتا ہے ادراک کا. درست ہے، لیکن اس نے آ کر اس کو تبدیل کر دیا. بہرحال سلسلہ جو ہے وہ ہیگل تک پہنچتا ہے. ہیگل نے پھر آ کر ڈائیلیکٹک فلسفے کی بنیاد رکھی. منطق بھی اس نے تاسیس کی تو وہ بھی ڈائیلیکٹک تھی، اور فلسفہ بھی جو اس نے तासीस किया तो उसके ऊपर भी नाम किसका पड़ा, डायलेक्टिक का। डायलेक्टिक फलसफे की इसने बुनियाद रखी आकर, और तकरीबन बहसें जो इसने की हैं वो इरफान के करीब करीब है, लेकिन पूरा इरफान नहीं है। यानी लग यूं रहा था कि ये उस तरफ जा रहा है जो हमारे उरफा बयान करते हैं, लेकिन दरमियानी रास्ते में जाके रुक गया, चूंकि जारी से बात है उन वसाइल से मुजाहज नहीं था, वो चीजें नहीं थी कि जो हमारे उरफा के पास मौजूद थी, चूंकि इसका फलसफा बिलाखर तजर्बे पर ही जो है वो बुनियाद रखता था। लेकिन उरफा जो हैं वो किस पर एतमाद करते हैं, शहूद के ऊपर, लिहाजा वहां तक नहीं पहुंच सका। और एक और बात अर्ज कर दूं कि जर्मनी फलासफर के बारे में एक चीज मशहूर है कि ये जब लिखते हैं, जब लिख रहे होते हैं तो उस वक्त ये और उसका खुदा ही समझ सकता है, और कुछ अरसा गुजरने के बाद फिर मुसन्निफ भी समझ नहीं पाता, फिर फकत खुदा रह जाता है कि जो उसको समझता है। ये वाकयात मशहूर हुए हैं, आप इनकी जो है वो दास्तानें पढ़ सकते हैं जाके। बाज़ हेगल कहता है मेरी बात को मेरे एक शागिर्द ने समझा है और उसने भी नहीं समझा। और ये बहुत मुश्किल लिखने वालों में जो है वो शुमार होते हैं, जो ये जो अलमानी और जर्मनी फलासफर हैं। रोमांटिक फलसफे का जो बुनियाद है वो यहीं पर है, ये रोमांटिक फलसफी हैं। रोमांटिक फलसफी क्यों इनको कहा जाता है, रोमांटिक से मुराद वो हमारा उर्फी रोमांटिक नहीं है, रोमांटिक से मुराद ये है कि इनका तखय्युल और एहसास जो है ना, इससे ये इस्तेफादा करते हैं हकीकत तक पहुंचने के लिए। और क्या है, ज्यादा से ज्यादा ये क्या है, जहन यानी नफ्स के ऊपर जो है इनका ज्यादा तिकिया होता है। हेगल ने आकर कहा कि जहन और आइन, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ये दो चीजें नहीं है, एक ही चीज है। हम क्या करते थे पहले फलसफे में, हम देखते थे कि जो जहन है उसको मुंतबिक करना चाहते थे आइन के साथ, यानी खारिज के साथ, यानी ऑब्जेक्टिव के साथ। लेकिन हेगल ने कहा कि नहीं, हकीकत जो है वो ऐसा नहीं है, बल्कि आइन और जहन दोनों एक हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एक चीज है। ये इसी वजह से आप देखें कि इनके मकतब का क्या नाम पड़ गया, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। लेकिन अगर हम आइडियलिज्म की इस्तेलाह को फकत मद्देनजर रखें तो पहली दफा जो भी बंदा देखेगा वो कहेगा ये कैसे हो सकता है, आइडियलिज्म तो सब्जेक्टिव होता है, जहन महवर होता है, और आइन ऑब्जेक्टिव को कहते हैं, तो ये कैसे हो सकता है आइडियलिज्म भी हो और आइनी भी हो। तो उसकी वजह यह है कि हेगेल ने कहा कि ये दो चीजें नहीं है, ये एक चीज है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म जो है वो कहा जाने लगा। हेगेल ने क्या कहा, मुख्तसर सी वजात करता हूं, आगे चलते हैं। अर्ज किया कि बहसें बहुत मुश्किल हैं, अगर इनके फलसफे पर रुका जाए तब जाकर हम तफसील से इस पर बहस कर सकते हैं, मफाहिम इसके ऊपर अगर इसको खोलना जो है वो शुरू कर दें आप, तो हेगेल ही को समझने के लिए कितने दर्स चाहिए, इसकी इस्तेलाहात को खोलने के लिए, इसकी जो है वो सारा मतालिब जो है वो बयान करने के लिए। हेगेल कायल था कि एक हमारे पास एब्सलूट आइडिया है, ये जो एब्सलूट आइडिया है इसको अगर हम देखें तो चीजों के साथ देखना शुरू करें, ये जो एब्सलूट आइडिया है ना, तो ये पानी है और ना ही ये दरख्त है, ना ही ये इंसान है, ना ही ये कोई और चीज है। अब हम एब्सलूट आइडिया को देखें तो वो हकीकत में क्या है, बीइंग है, होना, दुरुस्त है। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये एब्सलूट आइडिया जो है ना तो इंसान है, ना तो हैवान है, ना तो दरख्त है, यानी अपने अंदर कोई तायुन नहीं रखता, कोई तशखुस नहीं रखता, तो इस एतबार से क्या है, नॉन बीइंग है, यानी ना होना। यहां से ये फिक्र जन्म लिया किसने, कि हम कहते हैं कि इज्तिमा नकीजैन मुहाल है, दो नकीजें एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकती। हेगल कहता है कि अरस्तु का ये कायदा गलत था, इज्तिमा नकीजैन हो सकता है, इज्तिमा जिद्दैन हो सकता है। कैसे, अब एब्सोल्यूट आइडिया में आगे देख लें। सैरूरत जो है, ये जो होना जो है, ये बीइंग का जो मरहला जो है तय करती है एक चीज होने के लिए क्या है, उस पर आप ना तो होने का इतलाक कर सकते हैं ना ही ना होने का इतलाक कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी हो रही है। तो जब हो रही है तो आप किसी चीज का इतलाक नहीं कर सकते, आप उसको ना ही कह सकते हैं ये है और ना इसको कह सकते हैं कि नहीं है, तो दोनों इतलाक हो रहे हैं। बस इस एतबार से जो है वो इस्तेमाल नकीजन लाजिम आता है। बस यहां से एक इस्तेलाह सामने आई कि जो ये इस्तेमाल करते हैं, थीसिस, एंटीथीसिस, और तीसरी इस्तेलाह है सेंटीथीसिस। थीसिस एक चीज है, मसलन आप मद्देनजर रख लें, इसकी एक जिद पाई जाती है जिसको कहा जाता है एंटीथीसिस। ये थीसिस जो है अपने अंदर एंटीथीसिस रखता है, और ये थीसिस और एंटीथीसिस मिलकर किसका नतीजा देते हैं, सेंटीसिस का। ये एक फार्मूला उसने दिया, ये है सैरूरत का एक फार्मूला है, और इसको उसने लागू किया हर चीज के ऊपर। मसलन आप देख लें, मार्क्स की थ्योरी को अगर जाकर पढ़ें तो मार्क्स की थ्योरी जो है वो हेगल के फलसफे पर बुनियाद रखती है, तो उसने भी इन्हीं जो है फार्मूलों से इस्तेफादा किया और कहा है कि मुआशरा, मसलन एक मरतबा आप देख लें पाकिस्तान के इस वक्त की मौजूदा वज़ियत को देखें, इसको ये कहते हैं थीसिस। इसके अंदर एक जिद पाई जाती है, मसलन अगर सरमायादारी निजाम पाकिस्तान के अंदर चल रहा है तो इसके अंदर मुखालफत भी पाई जाती है सरमायादारी के खिलाफ, उसको कहते हैं एंटीथीसिस। ये जो थीसिस और एंटीथीसिस है, ये जब आपस में मिलते हैं तो इनकलाब वजूद में आता है, उस इनकलाब को क्या कहेंगे, सेंटीथीसिस। इसको हर चीज पर इतलाक किया, मुआशरे पर भी इतलाक किया, हत्ता फिक्र पर जाकर भी इतलाक कर दिया मार्क्सिज्म के अंदर जाके, के मार्क्सिज्म के ऊपर जब कभी गुफ्तगु हुई हमारी तफसील से तो वहां जाकर इस बहस को बयान करेंगे आगे। बहरहाल, तो ये जो ये ट्रायंगल है, जो इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया डायलेक्टिक लॉजिक, चाहे वो अगर मंतिक की तासीस की है उसने, उसको डायलेक्टिक लॉजिक कहा गया, और फलसफे को डायलेक्टिक फिलॉसफी कहा गया आकर। बात वाज़े, बस हेगल का कहना यह था कि जहान हस्ती की अगर आप तफसीर करना चाहते हैं वो इल्लत व मालूल के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि इल्लत व मालूल के साथ अगर आप जहान हस्ती की तफसीर करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसे सिरे तक पहुंचना पड़ेगा कि जहां पर ये लड़ी खड़ी हो जाए जाकर, चूंकि अलिफ की इल्लत बा है, बा की इल्लत जीम है, जीम की इल्लत दाल है, दाल की इल्लत जाल है, ये सिलसिला चलेगा आगे। तो कहते हैं कि अगर आपने हस्ती की तफसीर करनी है इल्लत मालूल के साथ तो फिर आपको एक ऐसे नुक्ते पर रुकना है कि वहां फिर आगे ना चले, लेकिन हम ऐसे नुक्ते पर जाकर खड़े नहीं होते। क्यों, आप जब एक इल्लतुल इलल पर जाकर खड़े होंगे, एक ऐसे नुक्ते पर खड़े होंगे जाकर कि जिसने इस पूरे सिलसिले को ईजाद किया है, तो यह सवाल तो खुद उसके बारे में भी है कि उसको किसने ईजाद किया, दुरुस्त है। तो लिहाजा चूंकि ये सवाल रुकने वाला नहीं है, यह चीज इस बात की अलामत है कि निजाम इल्लत मालूल के साथ हम जहान की तफसीर नहीं कर सकते, तो फिर किसके साथ तफसीर करें। कहते हैं बस दलील और नतीजा, जहान की तफसीर इसके जरिए होगी, ना इल्लत व मालूल के साथ बल्कि दलील और नतीजे के साथ। इस्तदलाल लेकर आएंगे, दलील लेकर आएंगे, उससे आप नतीजा हासिल करेंगे और जहान की तफसीर करेंगे उसके मुताबिक, ना कि इल्लत व मालूल की तरफ चले जाएंगे। बहरहाल, हेगल के ऊपर बहुत सारे एतराजात हैं और बहुत सारी चीजें इसके अंदर, बाज चीजें इसके अंदर ऐसी भी हैं जो काबिल कबूल भी हैं, लेकिन वो जब फलसफा हेगल को जो है वो मुकम्मल तौर पे खोला जाए तो वहां जाकर मसलन ये इसकी यही इज्तिमाई जिद्दैन या इज्तिमाई नकी जैन के बारे में बात कहना 100% गलत है। और जहान हस्ती का इल्लत मालूल के साथ तफसीर ना होने की बात करना ये 100% गलत है, इसकी इसको कबूल नहीं किया जा सकता फलसफे के अंदर। बहरहाल ये एक मकतब फिक्र था कि जो कांट के बाद वजूद में आया। बात वाजी हो गई आपके लिए मुख्तसर तौर पे, और आगा मिसबा ने भी इसी हद तक ही बयान किया है। इसके बाद जो मकतब यहां पर बयान करते हैं वो है पॉजिटिविज्म, जिसको ऑगस्ट कॉम्ट ने तासीस किया है। ऑगस्ट कॉम्ट ये तजुर्बे के अंदर एक इफराती नजरिया है। एक हम पहले तजर्बा गिरा पड़ गए हैं जिनको हमने क्या कहा था, एम्पेरिसिज्म, वो भी हिस गिरा थे, तजर्बे को मेहवर बनाते थे, तजर्बे ही के जरिए हकीकत तक पहुंचते थे। लेकिन इस कांट ने आकर पॉजिटिविज्म का नजरिए की तो जो है वो तासीस की, नजरिए को जो है वो बयान किया, इसके अंदर उस उनसे भी ज्यादा इफरात करके, उनसे भी ज्यादा तेज होकर तजर्बे के अंदर बाज मतालिब का इसने इजहार किया है कि इंशाल्लाह इसको कल बयान करते हैं, अभी वक्त जो है वो खत्म हो गया इंशाल्लाह। وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صل على